आन्या जुली के साथ नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर अन्वय, अनामिका जी और मोहिनी बैठी हुई थीं। आन्या को देखते ही मोहिनी घृणा से भर उठी। आज वहां केवल वेज डिशेज ही थीं। आन्या ने एक नज़र अन्वय को देखा और अगले ही पल अपनी निगाहें हटाते हुए बैठ गई। भले ही उसने खुद को समझाया था, पर अन्वय को सामने देखकर वो असहज महसूस करने लगी थी। उसने उसके बाद एक बार भी नज़रें नहीं उठाईं, खामोशी से अपना खाना खाती रही। वहीं अन्वय की निगाहें बार बार उस पर पड़ रही थीं। उसके दिमाग में वहीं सब बातें चल रही थीं। कुछ देर में सबने लंच किया, फिर आन्या जुली के साथ बाहर गार्डन में चली गई। अन्वय परेशान था, पर काम भी देखना था, इसलिए वो काम में लग गया। मोहिनी के दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि आन्या को देखते वक्त उसके लबों पर शैतानी मुस्कान फैली हुई थी। आन्या हर बात से अनजान बाहर बैठकर मौसम का मजा ले रही थी। जात को सबने साथ में ही डिनर किया। आज आन्या बुक पढ़ते पढ़ते जल्दी ही सो गई। अन्वय के दिल को अब भी सुकून नहीं मिल पा रहा था। कुछ देर बाद वो आन्या के कमरे में आ गया। उसे सुकून से सोता देखकर वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। आन्या की पीठ बेड के कॉर्नर की तरफ थी। कुछ पल सोचने के बाद अन्वय ने उसके टॉप को कंधे पर से नीचे सरका दिया और एक टक उस टैटू को देखने लगा जो वैम्पायर का था। उसके दिमाग में अब भी सभी बातें घूम रही थीं। अपनी पीठ पर हवा महसूस करते हुए आन्या ने नींद में ही करवट ली। अब अन्वय की तरफ उसका चेहरा था। अन्वय कुछ पल खामोशी से उसके चेहरे को देखता रहा। वो अब भी एक आम लड़की ही लग रही थी, जिसे एक नज़र देखते ही उसके दिल ने उसे अपने अंदर गहराइयों में बसा लिया था। अचानक ही उसकी एक अलग ही पहचान उसके सामने आ गई, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो कुछ पल खाली निगाहों से एक टक उसे देखता रहा, फिर बेड पर उसके पीछे जाकर बैठ गया और लेटते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। एक सुकून भरा एहसास उसके दिल को छूकर गुजरा और उसकी पलकें झुक गईं। आन्या के चेहरे पर भी सुकून के भावों भर आए। आन्या के करीबी से अन्वय के दिल और दिमाग में मचा तूफान एकदम से शांत हो गया और उसकी आंख लग गई। उसी वक्त पश्चिम के ओर के जंगल में बने विशाल भवन के सभागार में एक वक्त सम्राट के स्थान पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। सामने विक्रांत खड़ा था और उसके साथ एक काला साया भी था, जिसका चेहरा अंधेरे में होने के कारण दिख नहीं पा रहा था। औषधीय प्रयोग के लिए तैयार है विक्रांत, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। इस अधेड़ उम्र के आदमी, जो कि एक वैम्पायर था, ने विक्रांत से सवाल किया। जी पिताजी, बस कुछ वक्त में शोध कार्य पूरा हो जाएगा और इस बार हमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। एक बार वो घोल बनकर तैयार हो जाए, उसके बाद उसका परीक्षण किया जाएगा। हम हमारे लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गए हैं, बस कुछ वक्त और, उसके बाद हम हमारे मकसद में कामयाब हो जाएंगे, विक्रांत ने तुरंत जवाब दिया। हमें आपसे यही उम्मीद थी। उन्होंने विक्रांत को प्रशंसात्मक दृष्टि से देखा। वहीं अब उन्होंने उस साये की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा, इस बार फिर आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हमने आपको बस एक लड़की को अपने काबू में रखने के लिए कहा था, पर आपसे वो भी नहीं हुआ। एक मामूली सी लड़की नहीं संभाली गई आपसे। हम उन्हें अन्वय से दूर रखना चाहते थे, पर आपकी लापरवाही के कारण वो उन तक पहुंच गई। आप जानते भी हैं कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है आपने हमारे लिए। अगर आप उन्हें अपना बनाने में नाकामयाब थे तो मार दिया होता उस लड़की को, कम से कम वो हमारे लिए खतरा तो नहीं बनती। वो बेहद गुस्से में लग रहे थे। उनकी बात सुनकर उस साई ने सर झुका लिया। गुस्सा तो उसे भी आ रहा था। उसने कुछ देर अपने गुस्से को काबू किया, फिर उन्हें देखकर बोला, आप चिंता मत कीजिए, उसे अभी तक उसे अपने अस्तित्व और शक्तियों का भान नहीं है। अन्वय भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं जल्दी ही आन्या को हासिल कर लूंगा। वो आपके या हमारे मकसद के लिए खतरा नहीं बनेगी। उसकी शक्तियों पर मैं अपना आधिपत्य करूंगा, उसके बाद वो हमारे काम आएगी। अब आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वक्त के लिए आप एकदम शांत हो जाइए। अब जो करना होगा वो हम और आपके भाई करेंगे। एक बार वो घोल बनकर तैयार हो जाए, जिससे हम अन्वय और उनके साथियों को शक्तिहीन कर सकें। उसके बाद हम उनके सामने उनके पिता को मृत्यु के हवाले कर देंगे और उसके बाद अन्वय को मारने के बाद हम उनके क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। हम नहीं चाहते कि अब आपके कारण हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में और अधिक वक्त लगे, उन्होंने उसको आगाह किया। साई ने सर झुका लिया और देखते ही देखते हवा से गायब हो गया। अगली सुबह आन्या की नींद इत्तेफाक से जल्दी खुल गई। अभी 2 ही बजे थे। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, खुद पर किसी के मजबूत पकड़ का एहसास होते ही वो पूरी तरह घबरा गई, पर जल्दी ही वो स्पर्श को पहचान गई और उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव उभर आए। अब भी उसकी पीठ अन्वय के सीने से लगी हुई थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। अन्वय को देखने की इच्छा हुई तो उसने अन्वय की बाहों को बड़े ध्यान से खुद पर से हटाया और उसकी तरफ घूम गई। अन्वय देर से सोया था, पिछले कुछ दिनों से ठीक से सोया ही नहीं था, इसलिए वो इस वक्त गहरी नींद में था। आन्या अपनी कोहनी बेड से टिकाए और हथेली गाल पर रखे बड़े प्यार से उसे निहारने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अन्वय ने नींद में एक बार फिर उसकी पतली कमर पर अपनी बाहों को लपेट दिया और उसकी तरफ खिसक गया। आन्या लगभग उसके सीने से चिपक गई। उसने सर उठाकर उसे देखा तो अन्वय अब भी गहरी नींद में था। आन्या के लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने उसके सीने से अपना सर टिका दिया और उसकी पीठ पर अपनी बाहों को लपेटते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। पर उसे नींद नहीं आई। अन्वय के इतने करीब थी वो, ये एहसास उसका दिल धड़का रहा था। शरीर में अजीब सा कंपन हो रहा था। रोम रोम पुलकित हो गया था इन एहसासों से। फिर भला उसे नींद आती भी तो कैसे। कुछ घंटों के बाद अन्वय की आंख खुली और आंखों के सामने आन्या का प्यारा सा चेहरा आ गया। वो कुछ पल आन्या के चेहरे को एकटक देखता रहा। फिर उसने अपनी उंगलियों से आन्या के चेहरे पर आते बालों की लटों को उसके चेहरे से पीछे किया। आन्या के जिस्म में सिरहंसी दौड़ गई। उसके चेहरे के बदलते भावों को देखते ही अन्वय ने झट से उसे छोड़ दिया और उठकर बैठ गया। इसके साथ ही आन्या ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। अन्वय ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और बेड से उतरने लगा, पर आन्या ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया।